आस्था का मायूस चेहरा देखकर राधिका, रौनक और वंशिका एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी थीं। एक पल के लिए उन तीनों के मन में भी यही ख्याल आया कि कहीं दादाजी की तबीयत ज़्यादा तो नहीं बिगड़ गई। राधिका ने तुरंत आगे बढ़कर आस्था के कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, क्या हुआ आस्था, सब ठीक तो है ना? उन तीनों को वहां देखकर आस्था उठ खड़ी हुई और बोली, राधिका दीद, रौनक, वंशिका, आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ? तब वंशिका बोली, आस्था, वो तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, फिलहाल ये बताओ दादाजी ठीक है ना? तब तक अविनाश वहां से बाहर चले गए थे और आस्था उन तीनों को देखकर बोली, आप लोग परेशान मत होइए, सब ठीक है, मैं तो बस दादाजी को देखने के लिए आई थी, उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है और रात में उन्हें शायद पैनिक अटैक भी आया था। ये बोलते हुए आस्था का गला भर आया। दादाजी का पैनिक अटैक का सुनकर सभी लड़कियां पूरी तरह हैरान हो गईं। वंशिका ने आस्था का हाथ पकड़ा और बोली, आस्था, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, देखना जल्दी दादाजी ठीक हो जाएंगे। तब रौनक ने आस्था को गले से लगाया और बोली, तुम तो हमारी शेरनी हो जो हर हालात से निपट सकती हो, फिक्र न करो, जल्दी दादाजी ठीक होंगे और हम सबके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। चलो अब हमारे साथ चलो और नाश्ता कर लो, सुबह से यहाँ हो, थोड़ा कुछ खा लो, फिर देखते हैं। तब तक अविनाश हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी लिए वहाँ आ गया था और बोला, हाँ गौरी, तुम जाओ, जैसे ही दादाजी को होश आ जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तक मैं यहीं दादाजी को कंपनी दूंगा, साथ ही अपनी कॉफ़ी भी ख़त्म कर लूंगा। फिर उसने प्यार से कहा, गौरी, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुस्कुराती रहा करो। आस्था नम आंखों से अविनाश को देखा और नज़र अधिराज जी को देखकर तीनों लड़कियों के साथ हॉल में आ गई। हॉल में आते ही आस्था ने सबसे पहले गुनगुन को प्यार किया और फिर रश्मि के बेटे को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। तब तक नानी माँ भी अंश को लेकर हॉल में आ गई थीं। सभी को एक साथ इतनी सुबह देखकर नानी माँ काफ़ी खुश थीं। नानी माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटियों, हमें तो लगा था कि शादी की थकान के बाद आप सब आज देर तक सोएंगी, तो फिर आप सब इतनी जल्दी कैसे उठ गईं? तब रौनक हंसते हुए बोली, नानी माँ, जब पति साथ में होता है तो आराम से और सुकून की नींद आती है, हम लोग देर तक सो लेते हैं, लेकिन आज हमारे पति हमारे साथ ही नहीं थे तो हम क्या करते। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, सच बताओ नानी माँ, आज जाकर मुझे अपने बंदर की अहमियत हुई है, उसके बिना तो मैं सो भी नहीं सकती। रौनक की बात सुनकर सब लड़कियां मुस्कुरा दीं, लेकिन नानी माँ बोली, लेकिन बेटा, इतनी सुबह सुबह बोलो कहाँ गए? तभी आस्था बोली, लेकिन वो चारों तो अभी हमारे कमरे में ही थे, अरमान जी के साथ। ये सुनकर सभी हैरानी से भर गईं, क्योंकि हमेशा से सभी लड़के अगर अरमान से मिलने जाते थे तो स्टडी रूम में ही कोई मीटिंग होती थी, अगर कोई ज़रूरी बात होती थी तब भी वहीं बैठते थे, तो फिर इस तरह सीधे कमरे में क्यों गए थे? अभी सभी इसी बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें चारों लड़के एक साथ सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर रौनक तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, तुम कहाँ थे? तुमसे मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर रौनक मजाक में बोली, मुझे लगा कहीं तुम्हें फिर से जॉगिंग का भूत तो सवार नहीं हो गया और तुम जॉगिंग के लिए निकल गए हो। लेकिन रौनक की बात सुनकर आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप और शांत होकर एक तरफ जाकर बैठ गया। उसे देखकर रौनक मन ही मन सोचने लगी, ये तो हमेशा मेरी टांग खींचता रहता है, लेकिन आज तो कुछ बोल ही नहीं रहा। वहीं इस वक्त सभी लड़कों का मूड पूरी तरह खराब था, सब हॉल में आकर बैठ गए थे और आकाश का तो इस वक्त सबसे ज्यादा बुरा हाल था, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान उसके साथ इस तरह का बिहेव करेगा। फिलहाल रश्मि ने रौनक को इशारों से चुप कराया और सीधा आकाश के पास जाकर बैठ गई। फिर उसकी ओर देखकर बोली, क्या बात है आकाश, तुम कुछ बुझबुझ से लग रहे हो, सब ठीक है ना, क्या कोई बात हुई है? जैसे ही रश्मि ने ये सवाल किया, अचानक आकाश ने सुमित की ओर देखा और अगले ही पल उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने रश्मि की ओर देखकर कहा, रश्मि, कपड़े पैक करो, हमें यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर आकाश बिना रुके सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। आकाश की बात सुनकर सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, सब पूरी तरह से शॉक्ड रह गए और जाते हुए आकाश को देखते रह गए। सुमित, आहान और ध्रुव ने भी एक दूसरे की ओर देखा और फिर चुपचाप अपना सिर झुका लिया। आस्था अब खुद को रोक नहीं पाई, वो तुरंत सुमित की ओर देखकर बोली, सुमित भैया, क्या हुआ है? आकाश भैया यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज़ घबराहट से भर गई थी। सब ठीक है ना? क्या अरमान जी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, बताइए ना सुमित भैया। लेकिन सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपनी नज़रें झुका ली। आस्था ने फिर आहान और ध्रुव से भी सवाल किया, लेकिन वो दोनों भी पूरी तरह से चुप थे। ये देखकर नानी माँ की आंखें भर आईं और अचानक नानी माँ रोने लगी। नानी माँ को रोता हुआ देखकर आहान की आंखों में भी आंसू आ गए और वो सीधा वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। अब तो सभी पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। वहीं सुमित ने राधिका की ओर देखा और अपनी आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि राधिका की आंखों में भी ढेर सारे सवाल थे और वो भी सुमित से जवाब चाहती थी। रश्मि तो पूरी तरह मायूस होकर एक तरफ बैठ गई थी। फिलहाल आस्था ने सोचा कि किसी भी तरह उसे अरमान से बात करनी चाहिए, आखिर अरमान ने ऐसा क्या किया था कि आकाश भैया यहाँ से जाने की बात कर रहे थे। आस्था ने तुरंत वंशिका के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि जरूर अरमान जी और आकाश भैया के बीच कोई बहस हुई है, उसी वजह से वो ऐसा कह रहे हैं।
फिक्र मत करो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर आस्था देर न करते हुए सीधा अपने कमरे की ओर चली गई। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसने देखा कि अरमान वहां नहीं था। हैरानी से इधर उधर देखते हुए वो सोचने लगी, अरमान जी कहाँ जा सकते हैं, आखिर हुआ क्या है? ये सोचकर आस्था सीधा जिम रूम की ओर चली गई। और जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने देखा कि अरमान लगातार पंचिंग बैग पर मुक्के बरसा रहा था। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल पड़ा हुआ था। ये देखकर आस्था पूरी तरह घबरा गई। वो तुरंत अरमान के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। अरमान ने जैसे ही आस्था को अपने सामने देखा, उसने अपना उठा हुआ मुक्का तुरंत रोक लिया। आस्था ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अरमान जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। आखिर ऐसा क्या हो गया है? इस वक्त तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं, फिर आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? आस्था ने दुखी होकर कहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अरमान जी। लेकिन अरमान सिर्फ आस्था की बातें सुन रहा था, उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी आस्था ने एक बार गहरी सांस ली और अरमान की ओर देखकर कहा, आखिरकार आपने आकाश भैया से क्या कह दिया कि वो यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है अरमान जी, आप लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ है, हम जानना चाहते हैं। जैसे ही आस्था ने आकाश की जाने वाली बात बताई, अरमान की आंखों में एक पल के लिए कुछ अजीब सा उभर आया। वो तुरंत उसकी ओर देखकर बोला, क्या कहा तुमने, आकाश यहाँ से जाने की बात कर रहा है? आस्था ने धीरे से अपनी पलकें झुका ली और बोली, हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने रश्मि दीदी से कपड़े पैक करने के लिए कहा है। ये सुनते ही अरमान ने अचानक आस्था को अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया था। मन ही मन वो सोच रहा था,
मैं हर किसी का जाना बर्दाश्त कर सकता हूँ, सभी को अपनी जिंदगी से जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना पूरी तरह अधूरी है आस्था। आस्था को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर अरमान को क्या हो गया है और वो इस तरह उसे गले लगाकर क्यों खड़ा हो गया है। तब आस्था ने धीरे से अरमान की पीठ थपथपाई। इस वक्त अरमान का फौलादी शरीर पूरी तरह तप रहा था। आस्था ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे शांत करते हुए कहा, हम नहीं जानते अरमान जी आखिर आपको क्या परेशानी है या फिर आप किस बात को लेकर इतने ज्यादा परेशान हैं। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, लेकिन भाई जैसे दोस्त और वफादार साथी इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। दुनिया बहुत बदल चुकी है अरमान जी, हम आपको बस यही कहेंगे कि किसी भी कीमत पर अपने भाइयों और दोस्तों को खुद से दूर मत जाने दीजिए, हमेशा उन्हें अपने साथ रखिए क्योंकि वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। आस्था की बात सुनकर अरमान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, बस किसी बात को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आकाश पर निकल गया। उसने हल्की सांस लेते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर उससे बात कर लूंगा, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम जाओ मैं आता हूँ। ये सुनकर आस्था के चेहरे पर राहत आ गई। अरमान को सामान्य तरीके से बात करते देखकर कहीं ना कहीं उसे भी सुकून मिला। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है आप आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर आस्था वहां से निकल गई और सीधा हॉल में चली गई। कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर आया सुकून नानी माँ और बाकी सभी लोगों ने भी देख लिया था और सभी को समझते देर नहीं लगी कि शायद आस्था ने एक बार फिर अपना जादू अरमान पर चला दिया है और अब अरमान पूरी तरह शांत हो गया होगा। लेकिन इस वक्त हॉल का माहौल अभी भी काफी ज्यादा भावुक था। सब लोग चुपचाप और मायूस बैठे हुए थे। रौनक की तो बार बार आंखें भर आ रही थीं। वो मन ही मन सोच रही थी, आखिर मेरे पति को हुआ क्या है? कल तक तो वो कितने खुश थे, सबके साथ हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे, फिर अचानक हमारे परिवार पर ये उदासी कैसे छा गई? आखिर ऐसा क्या हो गया? कहीं ना कहीं इस वक्त रौनक सच में चिंता में डूबी हुई थी। फिलहाल दूसरी ओर रश्मि, जो आकाश के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई थी, उसने आकाश को इस तरह कपड़े पैक करते देखा तो हैरानी से बोली, क्या बात है आकाश, इस तरह कपड़े क्यों पैक कर रहे हो, बताओ ना क्या हुआ है और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हो? तभी आकाश ने अपनी लाल आंखों से रश्मि को देखा और बोला, रश्मि प्लीज इस बारे में कोई सवाल मत करो, मैंने कहा है मेरे साथ चलो तो मतलब चलो। आकाश की बात सुनकर रश्मि भी शांत हो गई, क्योंकि आज से पहले उसने आकाश को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। फिलहाल उसी वक्त ध्रुव, आहान और सुमित एक साथ वहां पहुंच गए। ठीक उसी समय सुमित ने आकाश के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलकर जब रश्मि ने सुमित को देखा तो बोली, सुमित तुम? तब सुमित ने रश्मि की ओर देखकर कहा, रश्मि मुझे आकाश से कुछ बात करनी है, बस 5 मिनट। रश्मि ने बिना कुछ कहे रास्ता छोड़ दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। आकाश ने अपने हाथ में पड़ा हुआ सूट बेड पर फेंक दिया और सुमित को देखने लगा, लेकिन सुमित के कुछ बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा, देखो सुमित अगर तुम मुझे यहाँ कुछ समझाने आए हो तो तुम अपना समय पूरी तरह बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मैं कुछ भी समझने वाला नहीं हूँ। आकाश की बात सुनकर सुमित ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए। उसने कमरे में एक दो चक्कर लगाए, फिर गहरी सांस लेकर बोला, क्या हुआ आकाश, अरमान की बात को लेकर नाराज हो? हाँ शायद तुम सही हो, हम अरमान के साथ कब से हैं और कब से एक साथ रह रहे हैं ये हम सब जानते हैं, हम भाइयों से बढ़कर हैं और भाइयों में इस तरह के छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। तभी आकाश तुरंत बोला, आज से पहले कभी भी अरमान ने मुझसे इस तरह बात नहीं की और उसने कभी मेरे गिरेबान तक पर हाथ नहीं डाला, और तुम कह रहे हो कि ये छोटी बात है? उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। ये छोटी बात कैसे हो सकती है सुमित, और वैसे भी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता,
ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर तुम मुझे इस तरह कैसे समझा सकते हो? आकाश की बात सुनकर सुमित कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अरमान किसी बहुत गहरी परेशानी में है। कुछ तो ऐसा है जो वो हम सबसे छुपा रहा है। राजवीर और सम्राट जैसी मुसीबतें तो पहले ही खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात है। वो रुक गया, फिर गंभीर होकर बोला, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों से पूरी तरह छुपा हुआ है। क्या सब लोग अरमान के बदले व्यवहार का सच का पता लगा पाएंगे? क्या अरमान से सब दूर हो जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, और सुनते रहिए पॉकेट FM पर तेरे इश्क में।